ध्यानान्मयी, ये सब ये श्लोक ये अंततः नीचे वाला ये याद कर लो। श्रवणा दर्शना ध्यानान्मयी भाव कीर्तनार्थ न तथा सन्निकर्षण प्रतिजातको ज्ञान। श्रवण करने से इष्ट वस्तु प्रिय वस्तु के समय में संबंध में श्रवण करना, ध्यान करना और भाव के अनुसार में कीर्तन करना हमारे प्रति, इससे मुझे जो प्राप्त जल्दी से होते हैं वो निकट में रहने से नहीं पाते। इसलिए आप लोगों हर चाहिए, गोपियों ने इनके जितने भी तत्व हैं इस समस्त तत्वों को परिहास करते हुए ही परिहास करते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं अहो वैदर्भी सा मधुर, मधुरा मधुर से भी मधुर भगवान की गोपियों के साथ में जो वार्तालाप इस लीला में हुई मैं उसका नमस्कार करता हूं। साधारण आदमी इस चीज को क्या समझेंगे उनकी ये सब बातें, जिसको अवस्था के द्वारा रखा है श्लाघो अपनी। अच्छा ये तो कहा, तो गोपियां यदि चली जाती तब तो बात होता है, वो तो गई नहीं। इसलिए कहते हैं कि मैं आपके इस अवहित्था को जो छिपाने की बात थी मैं खूब प्रशंसा करता यदि आप उसमें सफल हो गए, किंतु आप तो सफल हुए नहीं। आपने जो श्रेष्ठ रूप में जो छिपा करके जो बात छिपाने के लिए जो ऊपर से बात कही थी आपने वही किया। न प्रतिजात प्रजम स्थेयम अत्र इत्यादि जो कहा, उनके कहने से उनके वशीभूत होकर के तत्कातु जात स्थित व्यक्तात्म स्वभाव खनत सरणे ता मोहयन काम कला। नंद नारद जी कह रहे हैं मैं इस भगवान की अवहित्था को खूब प्रशंसा करता यदि गोपियों के काकु वचन से उनके रुदन से उनके भाव प्रकाश से वो अपने इस गुप्त भाव को रख रखते कुछ देर तक और, किंतु रख नहीं सकते। अथवा अवहित्था मैंने कृष्ण जी नारायण बन गए, अवहित्था से ना अपने को छिपा करके दुहिज श्याम सुंदर वंशी इत्यादि को रख करके चतुर्भुज नारायण बन गए और हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के खड़े हो गए। तो यदि वो छिपा सकते थे जब ब्रज की गोपियों को औरों को देखा तब तक तो जानबूझ करके छिपाने की चेष्टा की और छिपा भी रहे, किंतु जहां श्रीमती जी वहां पर उनको देखने के लिए आई बस उनको देखते ही अपने आप कहना नहीं पड़ा वो रूप अपने आप व्यक्त हो गया श्याम सुंदर और न जाने कहां वो रूप चला। तो इसीलिए वो कह रहे हैं मैं उनको प्रणाम उनको नमस्कार उनको प्रशंसा करता यदि अपने भाव को रख सकते, किंतु वो आशा नहीं कर सके। वो तत्क्षण अपने मन के भाव को व्यक्त करते और उनके साथ में राशि इत्यादि किया। यहां पर और भी कह रहे हैं गोपियों ने इनसे प्रश्न किया वो क्या है फज श्लोक क्या है भजंती एक कहते हैं गोपियां ने कहा जब कृष्ण राष्ट्र अंतर्ध्यान हो गए और अंतर्ध्यान पर कृष्ण कहाँ है खोजते 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 तन्मय होकर के वृक्षों से पूछने लगी ओह पुन्नाग कृष्ण कहाँ है ओह अशोक कहाँ है वो तुलसी कृष्ण कहाँ हैं, लताओं से पूछ रहे हैं ये कृष्ण कहाँ हैं। प्रेम में पक करके भाव विभोर हो गई और उनसे पूछ रही हैं, हरिणों से पूछ रही हैं, मयूरों से पूछ रही हैं। उस समय में अत्यंत विरस से होकर के वो श्लोक जो गोपी गीत का न गोपी गीत में वो करने लगी, जयतिकेधिकम जन्म ना भज इत्यादि श्लोक 31 श्लोक उन्होंने पाठ किया। कृष्ण से जब रहा नहीं गया, झट वो प्रकटित हो गए मनमथ मनमथक के रूप में। उस समय में कोई गोपी दूर से, कोई गोपी निकट से, कोई उन्होंने अपने अपने हाथों में ले लिया, कोई उनके पैर को अपने हाथों में ले लिया, कोई कुछ हंस करके और इस प्रकार से कृष्ण को उलाहना देते हुए, और कोई स्पष्ट रूप से हमें छोड़कर के इतना दुख दिया, इस प्रकार से कर निकट में आकर के उनके हाथों को पकड़ करके दाक्षिण्य भाव वाली गोपियां उनको उलाहना देने लगी। कुछ जो तटस्थ नहीं मैंने सम स्नेहा दोनों में थी, वो श्यामला भद्रा इत्यादि, वो निकट बैठ करके पैरों को पकड़ करके कुछ उलाहना दे रहे हैं। और श्रीमती राधिका जी की जो पक्षवादी जो गोपियां हैं वो राधिका जी के साथ में खड़ी हो कि दूर से ही कुछ क्रोध से ईशत क्रोध से भर कर और भिगटी नैनों से उनके तरफ में देखती हुई और केवल देखने भर लगी, कुछ कहा नहीं। और उन्हीं ने ये प्रश्न किया, अच्छे बतलाइए तो सही, मुस्कुराते हुए प्रश्न किया। कुछ लोग जो भजन करते हैं उनको भजन करते हैं, जो लोग प्रेम करते हैं उनसे प्रेम करते हैं, कुछ लोग है प्रेम नहीं करने पर भी प्रेम करते हैं, वो कौन है? इसमें धर्म भी कुछ है, व्यवहारिकता भी कुछ है। और कुछ लोग हैं प्रेम करो और ना करो किसी से प्रेम नहीं करते, तो आप इसमें से कौन से हैं? कृष्ण भी मुस्कुराने लगे, कुछ लज्जित होकर के बोले, प्रिय गोपियों जो प्रेम के लिए प्रेम करते हैं वो बनिए हैं, उसमें प्रेम एक पैसा भी नहीं। संसार में भी यदि कोई प्रेम के लिए प्रेम करता है तो बनियागिरी है, स्त्रियों को पतियों के प्रति, पुत्रों को पिता के प्रति ऐसा प्रेम नहीं होना चाहिए। प्रेम कैसा होना चाहिए? निस्वार्थ रूप से, उनका मैं ऋणी हूं, अंततः ये भाव तो रहना चाहिए। पति अपना सर्वस्व दिन भर काम करके कहां कहां से पैसा लेकर के भरण पोषण करता है, पुत्रों का भी पत्नी का भी करता है, उसका ऋण कौन चुकाएगा? इसलिए कहते हैं उनके प्रति ऐसा होना चाहिए। तो जो प्रेम के बदले प्रेम करता है ये बनियागिरी है, प्रेम नहीं किया और साथ ही साथ में प्रेम छोड़ दिया ये उचित नहीं, ये प्रेम इसमें नहीं। इसलिए जो लोग प्रेम नहीं करने पर भी प्रेम करते हैं ये माता पिता हैं, इसमें धर्म की भी कुछ बात है। माता पिता पुत्र नहीं करता है, शिष्य नहीं करता है, तभी गुरु उसे प्रीति करते हैं और उसका कल्याण चाहते हैं। पुत्र को पता नहीं, जब उसको पुत्र होता ना तब वो पता चलता जब पिता का हृदय कैसा होता है, वो नहीं समझेगा। इसलिए शास्त्रों में उनके प्रति उपदेश है। तो पिता चाहे वो पुत्र हजार तरह का सब कुछ करता है और पिता के सामने केवल आ जाए बस सब कुछ माफ, माता के पास में आ जाए सब कुछ माफ। पुत्र लाख बार पिता को छोड़ देगा किंतु पिता अपने मन से पुत्र को नहीं छोड़ेगा। और शिष्य का भी ऐसा ही, थोड़ी सी कुछ बात होगा शिष्य छोड़ देगा गुरु को, किंतु गुरु नहीं छोड़ता ना, लिखा ना, 10 जन्म लेकर के और उसका चोटी पकड़ करके उसको लाएगा ही, जहां जहां इधर उधर जाएगा उसको लाएंगे। ऐसे ही कृपालु होते हैं, इसमें ही धर्म है और इसमें ही सच्चा व्यवहार, इसमें बनियागिरी नहीं है भाई। और भजन करने पर भी, प्रेम करने पर भी, जो प्रेम नहीं करते हैं कोई सरोकार नहीं है, वो आत्माराम आप तकाम अकृत द्रोह द्रोही अकृत और गुरुद्रोह, चार प्रकार के, दो अच्छा दो बुरा। आत्माराम, आत्मा में रमण करने वाले को, सुखदेव गोस्वामी को कोई प्रेम करो न करो, सनक सनंदन सनातन से कोई करो न करो, उनको 10 गाली सुना दो कुछ आता जाता है, वो आत्मा में रमण कर रहे हैं। आप्त काम, जिनकी कोई कामना नहीं है उनको कभी क्रोध होगा? इस जगत में हम लोग क्रोधित हो जाते हैं, माता पिता भी क्रोधित हो जाए, गुरु भी क्रोधित हो जाता है, गुरु नामधारी और पिता नामधारी, वो लोग क्रोधित हो सकते हैं, क्यों? कुछ स्वार्थ है। किंतु जिनको कोई स्वार्थ ही नहीं है और जिनकी समस्त कामनाएं पूरी है, उनको क्या लेना देना किसी से, कोई प्यार करो और नहीं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जैसे आप्त काम आत्माराम को, मैं तो भाई आत्मारामों का भी आत्माराम और आप्त कामों का भी आप्त काम, और दो बुरे जो बतलाए, गुरुद्रोही और अकृतज्ञ। जो अकृतज्ञ होते हैं वो कैसे होते हैं, जितना भी भलाई करो, जितना भी सांप को दूध पिलाओ, क्या करेंगे, मारेंगे। दुष्ट लोग ऐसे ही हैं, 5,000 रुपया महीना दे रहा है, जो हमारा अंग रक्षक होकर के तुम हमारी सेवा करना है, 10 आदमियों को रख दिया गया, 20 आदमियों को अंग रक्षक जिनको मिल रहा है, घर में आ रहे हैं जा रहे हैं, पुत्र की तरह में उन्हें मान रहे हैं, उनके घर वालों को सबको स्नेह करते हैं, और इंदिरा गांधी को मारा बंदूक से, अकृतज्ञ। ऐसे ही जो अकृतज्ञ हैं वो प्रेम करने पर भी विरोध करते हैं, वो सेवा नहीं, अकृतज्ञ हैं। और गुरुद्रोही, गुरु ने मुझे क्या दिया, ये जो नहीं समझने वाले हैं उनका उपकार नहीं समझने वाले हैं, उनकी सेवा के बदले क्या करते हैं, उनका द्रोह आचरण करते हैं। मैं किंतु इसमें से कोई भी नहीं, प्रिय गोपियों तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा प्रिय हूं, मैं और तुम हमारी प्रिया, हमारे प्रेम के बीच में कोई भी स्वार्थ नहीं है, पहला नंबर, बनियागिरी नहीं, और पिता मैसा जैसा मैं तुम्हें स्नेह नहीं करता वैसा नहीं, और आत्माराम और आत्मा का आप मैं कम हूं, किंतु तुम्हारे प्रेम से मैं इसको दूर से नमस्कार करके जल और तिलांजलि दे करके बहा दिया है यमुना और गंगा में, इससे भी हमारा कोई सरोकार नहीं, और मैं अकृतज्ञ, मैं तो, तुम लोग ऐसा सोच सकती हो, क्यों सोचेगी, इसका कारण यह है, मैं एकनिष्ठ कभी हो नहीं सकता, तुम लोग एकनिष्ठ हो और मैं क्या हूं, बहुनिष्ठ। बहुनिष्ठ माने क्या,
बहुत से
हमारे कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों
भक्त,
भले ही थोड़े से थोड़े परिमाण में भक्त हूं किंतु हैं तो भक्त ही, मैं सबका हूं, मैं किसी को भी नहीं छोड़ सकता, जो 4 आना भजन करते हैं, जो 8 आना करते हैं, जो 1 रुपया भजन करते हैं, मैं किसी को नहीं छोड़ सकता। उन्होंने केवल आश्रय लिया है, भले ही अनर्थ भरा, मैं उनको भी नहीं छोड़ सकता, मैं ब्रजवासियों के लिए, मथुरा वालों को, द्वारका वासियों को, और दूसरी जगह में जो रहने वाले समुद्रसेन राजा है ना, उनको छोड़ सकता हूं ना? भले भीम को हराना पड़े, भीम को दुरुस्त करके कभी समुद्र से न
समुद्र जीताएंगे,
भले ही जो कुछ हो जाए, तो भीम को भी दुरुस्त करके मैं समुद्र सेन को जरूर दर्शन दूंगा। तो वो चले गए, दर्शन दिए, किसी को छोड़ेंगे नहीं। गोपियां हैं तो इसलिए केवल गोपियों के ही रहेंगे, उनका भी मनुष्य काम पूर्ण करेंगे, उसको भी किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो जैसा शरणागत है, जे जथा माम प्रपद्यन्ते, उसी को उसी रूप में करता है। प्यारी गोपियों, मैं न तो आत्माराम हूं, न आप्तकाम हूं, न गुरुद्रोही हूं, न अकृतज्ञ हूं। मैं तो केवल तुम्हारे प्रेम का वशी हूं, उसी का मैं भूखा हूं। केवल तुम्हारा प्रेम बढ़ाने के लिए अनंग वर्धनम, और वो क्या केवल इसी के लिए मैं छिपा हुआ था, जो तुम्हारा अंदर का प्रेम बढ़े और जो अंग हैं वो न बढ़े। नहीं तो लोग इसके लिए कनक खुशी करेंगे, इसलिए इनको दूर रखने के लिए, तुम्हारा प्रेम बढ़ाने के लिए मैं छिप गया। कैसे छिप गया? ऐसे छिप गया कि किसी को, जो दरिद्र आदमी है उसको कहीं से धन मिल गया, और वो धन कहीं चोरी हो गया, हमको कहीं से एक सोने का टुकड़ा मिल गया, स्पर्श में नहीं मिल गई, कांच जैसी, हीरा भी कांच जैसा होता, हीरा का टुकड़ा मिल गया, इतना वो कोहिनूर हीरा कितना बड़ा है, छोटा सा, कितने ग्राम का, थोड़ा सा, 4-5 ग्राम, अधिक से अधिक, और उसका कितना करोड़ों रुपया दाम, वो मिल गया और हमने उसे कांच समझा, क्योंकि हमने उन्हें तो कभी हीरा देखा नहीं, और मिल गया किसी भक्त को, सरल वैष्णव को, प्रेम बल्लभ जी को मिल गया। और उन्होंने कहा जी ये कांच का टुकड़ा, इतने में हमको पता चला जैसे भाई वो कांच, वो तो हीरा का टुकड़ा था। हाय हाय हाय, मैं कहने ले जा, हाय हाय हाय, कहाँ गया कांच, इधर खोजता हूँ उधर, उन्होंने तो फेंक ही दिया। ऐसे ही एक दरिद्र आदमी को, अधन आदमी को, जिस प्रकार से हीरा का टुकड़ा मिल जाए, और फिर इसके बाद उनको पता चले यार वो कांच का टुकड़ा नहीं, हीरा का टुकड़ा था, तो उसके लिए जैसा उसका मन उद्विग्न हो जाता है, कहाँ गया कहाँ गया, खोजता खोजता खोजता। ऐसे मैं छिप गया था तुम्हारे प्रेम को बढ़ाने के लिए, और तुम्हारी महिमा विश्व में प्रचार करने के लिए मैं ये छिप गया था। और हमारे विरह में तुम लोग क्या करती है ये जगत को दिखलाने के लिए, मिलन में तुम्हारी क्या स्थिति होती है ये तो जगत जानता है, देखा। और मिलन में विरह में तुम्हारी क्या स्थिति होता है, विश्व के लोग उसको समझें, और प्रेम किसे कहते हैं ये समझें, इसलिए मैं छिप गया। हमारे प्रति तुम लोग ये मत करो, आरोप मत करो, असूया मत करो, न पारे हम निर्बद्धन दुर्जन गृह श्रृंखला संवृक्ष तत्व प्रति जातुषा। हे साधु, आप लोग साधु, आपका प्रेम साधु है, साधु साधु, इसमें तनिक भी कहीं कोई कलंक या दाग नहीं है, काला कोई धब्बा नहीं है तुम्हारे प्रेम में, ऐसा विश्व में कोई प्रेम ही नहीं देखा गया। तुम लोग अपने आप हमारे प्रति प्रसन्न, अपने व्यवहार से, हम तो तुम इसके बदले में नहीं दे सकते, क्यों? पहला कारण वही एक निष्ठा, मैं एक निष्ठ नहीं हूं, तुम लोग एक निष्ठ, तुम लोगों ने हमारे लिए सबको छोड़ दिया, किंतु मैं किसको छोड़ू? और तुमसे यदि कहता कुछ मांग लो तो तुम लोग क्या मांगेगी? आप अपनी सेवा दीजिए, फिर और अधिक ऋणी हो जाए, इसलिए मैं ऋणी नहीं सकता, ब्रह्मा की आयु पा करके भी कोटि कोटि जन्म, इसलिए आप लोग अपने आप सुनो। ऐसी सब जो परस्पर की बातें हैं कृष्ण की, इन बातों के लिए मैं कृष्ण को और इस लीला कथा को मैं प्रणाम करता हूँ। ये सब हमारे हृदय में अपने आप स्फूर्ति प्राप्त हो और हमारा जीवन सफल। नारद जी इस प्रकार से इन कथाओं को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ा कल्प कल क्या है, इसलिए कि उनके पहले उपनिषद वेद वेद ही एक ग्रंथ था, उसी का भाग एक उपनिषद है। उसका तात्पर्य इतना गहन और इतने घन है कि परस्पर विरोधी मत मालूम होता है। एक अध्याय का दूसरे अध्याय से विरोधी भाव हो जाता है। कहीं इंद्र की पूजा, कहीं वरुण की पूजा, कभी इंद्र को ही भगवान बतलाया, कभी ब्रह्मा को भी भगवान बना दिया, कभी कुछ कर दिया। और इसके अतिरिक्त उपनिषद काल के बाद में जो ऋषि हुए वो विभिन्न प्रकार के विचार लिए और वेदों को अपने मन के अनुसार उसका अर्थ कर एक एक अपना अपना मत चलाया। षड् दर्शनों में से पांच ऐसे ही हुए, उसमें कुछ आस्तिक दर्शन में कुछ नास्तिक हुए। आस्तिक दर्शन किसको कहते हैं? आस्तिक
भगवान की स्वीकार करते हैं।
तुम हिंदी बोलते बारे में क्या है तो बोलो, बंगला ही बोलो।
ये शास्त्र है भगवान
संत वेद है और क्या बोला
ईश्वर भगवान का
परलोक
परलोक
परलोक है या लोक है जो मानते हैं वो लोग हैं आस्तिक। परलोक माने ही ईश्वर आ गया, इसलिए वेदा संति और लोक परलोक यह लोक परलोक अस्ति ये जो मानते हैं ये आस्तिक, जो नहीं मानते हैं वो लोग नास्तिक हैं। हमारे देश में चरवाकों के एक सर्वसम्मतिक मत से नास्तिक कहते हैं और अधिकांश लोगों ने ही तो एक को छोड़ करके बुद्ध और जैन को भी नास्तिक कहा और शंकराचार्य को प्रचंड नास्तिक प्रसन्न आस्तिक प्रचंड बाद में प्रचंड आस्तिक उनको माना।
जैन लोग भगवान तो नहीं
मानते? नहीं,
प्रसाद अवतार को
वेद को भी नहीं मानता, चरवाक भी नहीं मानता, बौद्ध भी नहीं मानता, जैन भी नहीं। और इसके अतिरिक्त जो पांच दर्शनकार हैं न्यायसंग पतंजल वैशेषिक पूर्वमीमांसा, ये लोग आधा वेद मानते हैं आधा वेद नहीं मानते। काम के लिए मान लेते हैं इसलिए अर्थ आस्तिक है और अर्थ नास्तिक है, विशेष करके प्रभुपाद की भाषा। संसार वाले लोग तो उनको आस्तिक ही मानते हैं और व्यास के समान मानते हैं, किंतु उचित नहीं। वो लोग भी करीब करीब ईश्वर को मानते हैं तो कर्म के अधीन, ईश्वर वो मानते हैं आराधना के लिए, वो भी आराधना है, वो भी मन को स्थिर करना, वही एक ही चीज है। ईश्वर सिद्ध है, यह वेद किसका बनाया गया है यह विचार करते हैं तो ईश्वर सिद्ध है ऐसा मान लेते हैं। इसलिए हमारे व्यास जी ने देखा कि उपनिषदों का विचार एक जगह सुशृंखल रूप से सुबद्ध करके ऐसे रख दिया जाए कि जो विचारमान पुरुष हैं वेदांत का उपनिषद का वेद का अर्थ सहज रूप में उदाहरण कर वेद का प्रतिपाद्य विषय क्या है ये सब अच्छी तरह से समझ। वेद का प्रतिपाद्य विषय है भगवान और उनकी आराधना, जीव उनका दास, भक्ति उनके प्रति कर्तव्य। संसार ये सत्य है, किंतु परिवर्तनशील और ध्वंसशील है। संसार और जगत में कुछ कुछ थोड़ा सा अंतर है। संसार किसको, जगत किसको कहते हैं? जो प्रारंभ काल से ही भगवान की इच्छा शक्ति द्वारा, सत्य संकल्पता द्वारा, उनकी माया शक्ति के द्वारा जो प्रकटित अथवा उसके द्वारा रूपांतरित है, वो जगत सत्य। ये सब जो 14 गुणात्मक जो ब्रह्मांड है, ये जगत सत्य। किंतु उसमें आसक्ति और मैं और मेरा का जो भाव है, इसको कहते हैं संसार। ये असत्य है, झूठा है, हाँ? ये हम लोगों के आचार्य लोगों का विचार है। तो उसके द्वारा यही प्रतिपादित, और जगत में जीवों की अपनी शुद्धावस्था कैसे आएगी, ये सब उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय है। विभिन्न तरह के उपाख्यानों आख्यानों के द्वारा विभिन्न विभिन्न संहिताओं में ये सब विचार किए गए। एक एक को पढ़ने से एक एक का कंठ और दृष्टि समझ में आएगा, किंतु जब अच्छी तरह से विचार करेंगे, सुशृंखल भाव से देखेंगे, ये सब वेदों का उपनिषदों का एक ही तात्पर्य है, भगवान में। कहीं भी ज्ञान शब्द का उल्लेख गीता वेदांत इत्यादि शास्त्र में, श्रीमद्भागवत इत्यादि में नहीं आए। संसार झूठा है, ये कहीं भी गीता भागवत पुराण रामायण कहीं भी व्यास रचित ग्रंथों में नहीं। एक बात को समझना जरूरी है, व्यास जी का मत या उनका जो प्रतिपाद्य विषय है, शंकराचार्य जी का उससे पृथक है। दोनों का एक मत नहीं है। भाष्य उन्होंने किया, किंतु उनका मत अलग है और वेदांत सूत्र का मत अलग है। उन्होंने कहा कि हमारे गुरु जी जो व्यास जी हैं, उनका मति विभ्रम हो गया, इसलिए उन्होंने आनंदमय अभ्यासात लिखा, नहीं तो वो लिख नहीं सकते। आनंदमय अभ्यासात, आनंदमय ये शब्द ही की, ये शब्द की सिद्धि ही नहीं होती है। आनंदमय शब्द ही नहीं, आनंद होना चाहिए था। ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय, ये तीन चीज है ही नहीं है। ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञाता नहीं है और ज्ञेय भी नहीं है। इसलिए वेदांत शास्त्र का तात्पर्य दूसरे सूत्र में जो उन्होंने वर्णन किया, उन्होंने बात बतलाया, जन्मा जन्म आदि जतह जिससे हुआ। अच्छा, ब्रह्म का स्वरूप लक्षण क्या है? सच्चिदानंदमय है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान, ये सब उनका स्वरूप लक्षण है। जगत की उससे सृष्टि होती है, ये कौन सा लक्षण है? स्वरूप लक्षण नहीं है ये जगत। तब यदि हम रख लें उस जगत को भी इसके अंदर में, चीज शक्ति के द्वारा चीज जगत, जीव शक्ति के द्वारा जीव जगत और
जड़ शक्ति के द्वारा जड़ जगत,
तब ये ठीक है। इसलिए जन्मादि, जन्म आदि जतः, जन्म आदि मैंने चीज जगत, जीव जगत और ये जिनसे होता है, ये सब स्वरूप लक्षण में आ जाएगा। इसलिए स्वरूप लक्षण ही है, किंतु उसको लेकर के, चीज जगत को लेकर के, इसलिए ये आंशिक अर्थ हुआ। अधिकांश लोगों ने ऐसा अर्थ किया है इस जगत का, किंतु हमारे आचार्यों ने, वैष्णव आचार्यों ने, हमारे गौड़ीय वैष्णव वालों ने यह अर्थ नहीं लिया। चीज जगत को भी ले लिया, जीव जगत को भी लिया और इस जगत को भी माइक के बदले। इसलिए कल उसने जो कहा था, हमने वो कहा कि वो अर्थ ठीक नहीं, केवल 24 तत्व ही जिनके अन्य भाव से प्रकाशित होते हैं, यह गलत है। किसी उद्देश्य के लिए मैंने कहा। याद है कल जब वो कहा था जो 24 तत्व जिनसे निकलते हैं अन्य रूप से वो ब्रह्म है, ये आंशिक का आंशिक एक बहुत गड़बड़ का हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अन्य रूप में वो तीनों शक्तियों को लेना पड़ेगा। विचार जब तत्व से करेंगे तो कहना पड़ेगा, कहने का अतिरिक्त तो कोई उपाय नहीं। चीज जगत कैसे हुआ तो ये नित्य ही है, तो अभी कहा जाता है कि चीज शक्ति का विलास है, ऐसा तो कहेंगे है, तो और क्या उपाय है? चीज शक्ति का वो विलास है, जीव भी चित शक्ति का विलास है, अनुशक्ति का और जड़ा शक्ति का ये विलास है, ये भी अनित्य नहीं है। प्रवाह रूप में ये नित्य है जगत, कभी प्रकट होता है और कभी, किंतु इसका शांत है। शांत माने सौ अंत अंत युक्त है, ये इसलिए इस द्वितीय सूत्र में बतलाया जन्मादस्य जतः। जन्म इन सब का होता है, तो जन्म होता है यदि मान लें तो विकार हो जा सकता है, इसलिए विकार के रूप में उन्होंने ग्रहण नहीं किया। शक्ति का परिणाम बताया हमारे जितने आचार्य लोग, व्यास जी का यही मत है, क्योंकि भागवत को भागवत ही उसका यथार्थ भाष्य है, व्यास जी ने स्वयं उसका भाष्य बनाया, जैसे बृहद भगवतामृत का बनाया सनातन गोस्वामी जी ने स्वयं, ऐसे उन्होंने स्वयं, इसलिए उनके विचार ही ठीक है। इसलिए भागवत का अर्थ ही उसका लेना पड़ेगा। इसलिए द्वितीय का वो जो पहला श्लोक है श्रीमद् भागवत का, सत्यम परम धीमहि, धीमहि का तात्पर्य क्या उसमें? वो तो करें जिनसे जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय हुआ, फिर उनका ध्यान धीमा ही है ना, इसलिए शंकराचार्य का विचार यही पर खंडित हो जाता है। ध्यान ध्यान है ना, यदि निर्विकार वस्तु होता तो ध्यान ही नहीं होता,
ध्यान अध्यय वस्तु होगा,
इसमें तीन हो गया, ध्यान करने वाला है एक और ध्याता है, इसलिए तीनों हो गया। द्वारा कैसे पुष्ट किया, देखो बहुत उपाख्यान इसके हैं। देवता लोग असुरों को परास्त कर दिया, परास्त कर दिया, और परास्त करने के बाद में एकत्रित हुए और इंद्र की का अभिवादन करने लगे, स्वागत करने लगे, फूल की मालाओं से ढक दिया उनको और उनका जय जयकार होने लग गया। इतने में एक तेज कहीं से प्रकाश होकर के नीचे ऊपर से पृथ्वी लोक में आया, उस तेज को देख करके सभी देवताओं ने मिल करके कहा जैसे भाई इसका निर्णय कि ये क्या चीज है, ये कौन आया? तो इंद्र ने अग्नि को भेजा सबसे पहले, या सब देवताओं ने मिलकर अग्नि को भेजा, अग्नि गए तो उस स्थान पर जब गए तो देखा जे कोई व्यक्ति है, तो उनसे पूछा भैया आप कौन हैं, आपको हम लोग समझ नहीं रहे, उन्होंने तो आप कौन हैं? आ तो मैं अग्नि हूं, आपका परिचय क्या? विश्व के सब चीजों को मैं जला करके खा कर सकता हूं, जैसे ये सूखा हुआ तृण है जरा इसको आप जला दीजिए, तो जलाने की चेष्टा की और अंत तक बहुत चेष्टा करते करते थक गए, वो सूखा हुआ तृण नहीं चला, आश्चर्यचकित हो गए, उनको प्रणाम करके लौट आए। इसके बाद उन्होंने कहा जी साक्ष मैं चलता हूं, देखते हैं कौन है। तो वो जाते ही अंतर्ध्यान हो चुके, इतने में नारद ऋषि
देवी प्रकट हुई
देवी माने कौन?
शक्ति,
शक्ति भगवान की शक्ति योग माया होंगी वो, या महामाया इनके पास में होंगी वो प्रकट हो गई। मैंने कहा जैसे ये कौन थे, यही पर ब्रह्म है जिनकी इच्छा से ही सब कुछ संचालित होता है, उन्हीं की कृपा से आप लोग युद्ध में विजयी हुए हैं, उन्हीं की कृपा से ये सूर्य उगते हैं, उन्हीं के ही शक्ति से ब्रह्मांड सब कुछ संचालित और सब कुछ होता है, संचालित होता है, वही पर ब्रह्म। बस स्थान को सब लोगों ने प्रणाम किया, लोगों ने समझा जे नहीं उस अख्यान या और भी ऐसे कितने हैं, इन सब का तात्पर्य लिया जे ब्रह्म से ही जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय जो कुछ संचालन नियमन जो कुछ होता है ये सब आदि शब्द का ये सब आ जाएगा। सर्वतः वो सच्चित आनंदमय है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि उन्हीं का श्रीमद भागवत में अहो ब्रह्म अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप्रियम जन्म मित्र परमानंद
पूर्ण ब्रह्म सनातन।
और कल इन लोगों ने जो कहा कि इसमें जतो इमान भूतानि जायन्ते येन जीवन्ति अभिशम्विशन्ति तद् ब्रह्म, उसमें सात की आठ जो कारक हैं सभी आ गए हैं, इसमें
सात कारक
साथी हैं, सातों कारक इसमें आए हैं जिसमें तीन तो प्रधान एकदम प्रत्यक्ष रूप से है,
छोटा कारक एक का समाधान को
हाँ तो ये सातों आए हैं किंतु प्रत्यक्ष रूप में तीन हैं, करण अधिकरण
उपादान
और अपादान और अधिकरण, ये तीन। करण माने जिसके द्वारा, जतो वा इमानी भूता है जिससे, और
जेन
जेन
जातानि
जातानि ये हुआ क्या
करण
कारण,
जतो
अपादान और जस्मिन ये अधिकरण जिसमें संपिशन्ति जिसमें अंत में मिल जाते हैं, और वहाँ कर्ता में प्रथमा में तृतीया है ऐसा समझो, होता है ना
कर्तरी तृतीया,
क्या
कर्तरी तृतीया,
कर्तरी तृतीया उसके द्वारा हुआ माने क्या उसने किया, उसके द्वारा खाया गया माने क्या
उसने खाया
इसलिए इसमें कर्ता भी है, द्वितीया भी है, तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सब उसी के अंदर में जिसमें समस्त कर्ता लोग मिले हुए हैं, कारक मिले हुए हैं, वो निर्विशेष निराकार इत्यादि कैसे हो सकता है, कल इन लोगों ने बतलाया। और भी जो साधारण में बतलाने वाली चीजें हैं सब इसमें आई, इसलिए ये सब जिसमें गुण हैं सर्वज्ञता इत्यादि सभी कुछ है वही पर्व, वही हमारे लिए आराध्य है, उसी के प्रति हमारी भक्ति होगी, उसी के लिए गुरु हैं, उसी के लिए सब शास्त्र हैं, शास्त्र जो भी त्वात इत्यादि सब पीछे आएगा ये सब। इस तरह से इसका तात्पर्य परब्रह्म में, अर्थात परब्रह्म में भी अंतिम सीमा कृष्ण तक उसमें आया। अब हम लोग आप लोग 5-7 दिन में इसके बाद का शुक्र याद करके
शास्त्र जनित्वात
शास्त्र जनित्वात आएंगे। वहाँ पर चुप है, बड़े बुद्धिमान आदमी है, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जुक्ति नहीं चलेगी तो चुपचाप
खुल जाए,
चुपचाप का कोई भी शत्रु नहीं है, कोई उसका उत्तर नहीं है। यहाँ पर जीव गोस्वामी ने 8-10 प्रश्न पूछा है उनसे, वहाँ पर चुपचाप हो जाते हैं, कोई उत्तर नहीं है। सब कुछ कृष्ण ने भ्रमर को भेज दिया है, क्रूर को भेजा है, अक्रूर को भेजा है, अक्रूर ने उद्धव जी को वृंदावन में भेजा, यहाँ पर समझो जो कृष्ण ही उद्धव जी को भेजकर आप पीछे से वो भाव पैदा करने के लिए अपने आप भ्रमर हो गए और भ्रमर हो करके वहीं पर उपस्थित थे। भ्रमर को देख करके वो कहने लगे, जबकि 10-11 श्लोक जब कह गई उनको थोड़ा सा मानो ऐसी स्फूर्ति हुई, हमने इसको गाली गलौज ही की, इसका बहुत अपमान किया, इसके प्रभु को भी अपमान किया, इसे पूछा, इसे इसका कुछल सेम भी नहीं पूछा, अरे पानी पी लो ये भी नहीं पूछा, कहाँ से आए हो हमारे प्रिय के संवाद देने वाले। मैंने इसे कोई भी प्रीतिपूर्वक बात नहीं की, यह भाव आते ही उनका समस्त भाव ही चेंज हो गया, बदल गया, बदलने के साथ में अब कुछ सौम्य भाव आए। सौम्य भाव आते ही वो कह रही है अपुगत मधुपुरिया आर्य को क्रोध नाश, विरह की चूड़ांत स्थिति है, फूलों के सेज पर, कमलों के सेज पर एक कांचन पुतलिका निश्वास धीरे धीरे समय समय आ रहा है और पड़ी हुई, प्राण है कि नहीं है, श्वास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी ठीक नहीं मालूम। और उसी समय में छीन शब्दों में वो कुछ बन बनाती हुई बोल रही है, उद्धव जी बहुत दूर से उसको सुन रहे हैं। अंत में एक आती है, जब उसको कुछ होश आता, हमने तो इसका कुछ आदर ही नहीं किया, बहुत तिरस्कार अब तक किया, इसलिए कुछ समझ करके कह रही हूं अभी मत मधुपुर किया अर्धुष्ट्रार्थ नाश्ते आस्ते, क्या हमारे आर्य पुत्र किस रूप में कह रही है। आर्य पुत्र उसको कहते हैं जो सरल सीधा हो, उसको आर्य पुत्र का आर्य मानी यहां पर सरल। अब तक तो कुटिल कह रही थी, महाकुटिल धूर्त झूठे और न जाने क्या क्या कहा, अब यहां पर आर्य पुत्र करना, वो सर्वसिद्ध है, बहुत सर्वसिद्ध है, नहीं तो ब्रजवासियों की स्थिति और हमारी स्थिति होती, इसका लाभ उठाया गया है। कैसे आगे बदला अपू बधु मधु किया कृष्ण, क्या हमारे आर्य पुत्र सर्वसिद्ध व्यक्ति क्या मथुरापुरी में हैं, अर्थात वो मथुरापुरी लौट आए हैं, कहाँ से लौट आए हैं, शांतिपनी के
पढ़ने के लिए,
शांतिपनी के यहाँ से पढ़ने गए, कितना सुकोमल अंग गुरुगृह में वास करने योग्य है, कितना कठोर तपस्या, वर्षा हो रही होगी और उसमें गुरु की सेवा के लिए जाना होगा, सब शिष्य ऐसा नहीं कर सकते, कुछ तो शिष्य हैं जो थोड़ी सी यदि गुरु कह दे क्या पाम से सून फंसे जाओ, तो गुरु जी को अंगूठा दिखा करके चले जाते हैं शिष्य लोग, कोई भी बात नहीं मानते, बात बात पर बिगड़ भी जाते हैं, और कहा ये इतना सुकोमल शरीर, और कहा गुरु जी का आदेश पालन करने के लिए धूप में कहा सूर्य का कठोर ताप उसमें घूम रहा होगा, कहा वर्षा में जा रहा होगा, कहीं शीत में जा रहा होगा, कहीं गैया चराने जा रहा होगा, कहीं गोबर कंडे पाप रहा होगा, कभी गुरुवाइन के लिए रसोई बना रहा होगा, कितना बगीचा खोद रहा होगा, कितना कठोर काम, गुरु जी उस समय में जितना कठोर काम होता है सब देते हैं, हम लोग तो क्या करते हैं 5 किल तेल पहले से ले लेंगे, अरे ठाकुर जी को अच्छा अच्छा भोग करके सब लोगों को खिलाओ, गुरु गृह है ये, भोग का स्थान नहीं। किसी भी व्यक्ति को हम भोगों के द्वारा आकृष्ट नहीं कर सकते हैं, इस चीज को समझना चाहिए। कुछ दिनों के बाद में उसका फल बड़ा बुरा होगा। हम लोग के गुरु वैष्णव लोग भक्ति विनय ठाकुर जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती हमारे गुरु जी बेवकूफ लोग नहीं। हम लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने प्रभुपाद गुरु जी को कहां सुकोमल अंग राजपुत्र, उनके सींग कैसे कोमल, कितना सुंदर था वो तुम लोगों को मैं नहीं बतला सकता, कितना सुकोमल। और उनको सवेरे भेज दिया क्या खिला करके, चावल का खूब, और उसको मान अन्न कर दिया, उसने नमक दे दिया थोड़ा सा, और उसको खा करके ये लोग ये नहीं कहते थे कि हम ये नहीं खाएंगे। आजकल तो हमारी मूंग की दाल भी यदि हो
छिलका
तो नहीं खाएंगे, ये क्या गाय भैंस खाता है। जो वैराग्य पूर्वक नहीं रहेगा वो गुरु में रह नहीं सकता है, उसका उपलब्धि नहीं करेगा। खाने के लिए रहने के लिए हम लोग आए हैं न, हम किसी विशेष उद्देश्य के लिए आए तो वो ही कह रहे हैं। गुरु गृह में बड़ा कठोर साधन होता है, उस समय में ये धनी है कि गरीब है ये सब कोई विचार नहीं। उनका जीवन का महान लक्ष्य प्राप्त कराने के लिए ये सब कराते हैं। रामचंद्र जी कह रहे हैं हमारे